अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात। पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल ज्वेलर्स के असलम भाई को कॉल करें ना एट 9057907879, दैट इज 9057907879।
पाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला। ओहो सल्ला भैन जी, कैनेडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा।
ए है जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप। नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा है। साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है। एशियन फूड सेंटर दियां ओंटारियो विच 9 लोकेशंस विचों जिथे मर्जी आ जाओ।
एना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton, ya call karo
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं और ई आवाज टीवी पर देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब गर्मा गर्म खबरें लेकर प्रेशर कुकर में बनाकर शाजिया मलिक साहब अभी स्टूडियो आ गई हैं। तो आइए सबसे पहले उनको खुश आमदीद कह लें और फिर उनसे पूछते हैं कि आज की गर्मा गर्म खबरें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाजिया जी कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम आमिर, बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसे हो?
अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चाहिए आपकी और हंसी खुशी मुस्कुराती रहें और आई होप कि आज की खबरें
जिंदा रहें,
वो मैं आखिर में बताऊंगा।
अच्छा,
अभी तो देखें, अभी
दिन शुरू है,
अभी तो दिन चढ़ा है।
हाँ।
ठीक हो गया, तो दिन चढ़ा है अभी,
ठीक
तो
है।
अभी तो आपने लोगों को धमाके, आज तो वाकई जो है वो धमाके हो गए।
हाँ।
जिस तरीके से जो है वो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है पूरे दुनिया में और आप तो उसकी कहते हैं ना कि मास्टर हैं।
नहीं नहीं, हम जीरो हैं, हम हमारा हमारी कोई हैसियत नहीं है सर,
तो
हमारी क्या हैसियत
वो
है?
आप जो है वो ब्रेकिंग न्यूज लोगों को सुनाएंगी।
हाँ जी,
और
हाँ।
फिर पाकिस्तान की खबरें, पेट्रोल सस्ता हो गया।
असल में आज जो है ना बहुत सारी चीजें हैं, एक तो जो हमने कल वादा किया था, एक तो स्पेशल रिपोर्ट,
स्पेशल रिपोर्ट अगली बात,
ठीक है, ये तो एक तो ये स्पेशल रिपोर्ट है, फिर जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, एक तो हर किसी को गद्दार बोला जा रहा है, हर किसी के जो खिलाफ है मोर्चे निकाले जा रहे हैं, हर किसी को कहा जा रहा है ये तुम्हें नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। जैसे भी तुम बता ही रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि हम सीटें अब दे दें उसको, अलाउ कर दें, ईसीपी जो पहले इलेक्शन कमीशन मान नहीं रही थी अब वो मान गई है, अपने उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया कि हाँ जी रिजर्व सीट्स हम दे रहे हैं पीटीआई को, अब जी वो एक और स्यापा पड़ गया। उस सिलसिले में हम फिर हमारे जो एक एक्सपर्ट हैं अकबर साहब, वो बहुत इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, वो मिलिट्री को कवर करते रहे हैं और इन सारी चीजों को, तो ही नोज अबाउट दीज थिंग्स, तो ही हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड कि वो हमारे साथ आज बात करें इन तमाम चीजों के पे कि भाई लॉ कैसे चलेगा उस मुल्क में, अगर आप सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है मुल्क की, उसके भी अगर आप फैसले नहीं मानेंगे तो किसके मानेंगे, यू नो, और कौन किसके अंडर है, जुडिशरी किसके अंडर है, मिलिट्री किसके अंडर है, सिविलियन गवर्नमेंट किसके अंडर है।
जी आपकी बात आगे बढ़ाते हुए आप सही कह रही हैं, बेसिकली होता क्या है, सिस्टम है एक, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की कोई अदालत नहीं है, 100% सही है, इस पे कोई दो राय है ही,
मतलब एज फार एज द लॉ ऑफ द कंट्री इज कंसर्न्ड एंड जुडिशरी इज कंसर्न्ड।
अब यहाँ सवाल जो जिसको कहते हैं ना कि यहाँ वो है ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो काम है वो सिर्फ कानून की तशरी करना है, कानून बनाना नहीं है।
हाँ, तो उसने तशरी ही की है ना, इसीलिए तो उसने ईसीबी को कहा ना कि तुमने
अब वो तशरी तो हो गई।
हाँ,
तुमने अलाउड कर दें
भाई कि जो मखसूस सीटें
थी।
हाँ,
लेकिन क्योंकि कानून बनाने वाले कहते हैं कि जी जो हम अब आपको कानून अब दे रहे हैं आप उसकी तशरी करें।
हाँ, तशरी करें तो ठीक है, बस उसी के ऊपर हम उनके पर बात करेंगे।
और ये भी 7:15 बजे,
हाँ इंशाल्लाह 7:15 बजे
जुड़ेंगे और तकरीबन एक और गेस्ट हम आपके साथ जुड़ाएंगे।
एक और गेस्ट है हमारे साथ, मुझे हमें अभी पता चला है कि जो जो हमारा ये जो क्रिकेट हो रही है या
T20
हो रहा है उसके जो डायरेक्टर हैं करण साहब,
जी जी,
हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ आ जाएं उनके जो नए अब प्रेसिडेंट है ना, अमजद बाजवा साहब।
अच्छा, ये भी बाजवा साहब।
हाँ, अमजद बाजवा साहब। हाँ, अमजद बाजवा साहब को हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो आ जाएं, वो ही सीम्स टू बी बिजी।
ओके।
और हमने फिर रशपाल बाजवा साहब से कहा तो ही हैज बिन एक्सट्रीमली डिसेंट एंड अ काइंड पर्सन। उन्होंने कहा मैं तो आ जाऊंगा लेकिन आपके जो नए प्रेसिडेंट हैं अगर आप उनको बुलाएं तो अच्छा है। तो फिर जब हम इनके साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे जो डायरेक्टर हैं करण वो फिर आ जाएंगे अभी के लिए एंड ही इज बिजी। ये मेरे ख्याल में टूर्नामेंट शायद खत्म होएगा तो फिर अमजद साहब को भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे।
बिल्कुल जरूर बात करेंगे।
इसीलिए हमको जैसे अभी आमिर आपको बार बार बता रहा था कि कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो इसीलिए बार बार कह रहा था G20 के ऑफिशियल्स हैं हमारे साथ क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता नहीं था कि हमारे साथ कौन आने वाले हैं, उनके डायरेक्टर आ रहे हैं या उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं हमारे साथ, तो दैट्स वाई। लेकिन आज जरूर कोई रहा था क्योंकि कॉन्फर्मेशन हमें आई थी क्रिकेट कैनेडा से। हाँ, टाइम क्या है हमें?
7:45।
यस यस एग्जैक्टली 7:45 पे वो लोग हमारे साथ स्टूडियो में होंगे और वो भी हमारे साथ बात करेंगे। तो इस तरह बहुत सारी चीजें चल रही थी तो इसलिए मुझे लगता है कि अब टाइम ना वेस्ट करें,
खबरें कर लें। और शाजा जी रिपोर्ट भी आज हम पेश करेंगे खबरों के बाद।
हाँ।
और वैसे तो एक रिपोर्ट शाजा जी मैंने भी तैयार की थी आज, बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है वो।
बताएं बताएं।
और नहीं वो अब हम कल रख लेंगे क्योंकि हमारे आज गेस्ट भी हैं।
हाँ।
तो मुझे मालूम नहीं था कि आज इतने वो हो जाएंगे, क्लोज हो जाएगा टाइम, मेरे जहन में नहीं था। वो मैं उसकी हेडलाइन दे देता हूँ।
अच्छा,
वो हेडलाइन उस रिपोर्ट की ये है कि इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा किससे है।
हाँ, ये हम पूछेंगे आज अकबर साहब से। अकबर साहब ये भी हमें बताएंगे।
इसके पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, ये रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट है। इंशाल्लाह इसको कर लेंगे।
कल फिर ऐसा मैं करेंगे कि कल मेरी नहीं रहेगी रिसर्च रिपोर्ट, कल तुम्हारी है।
इंशाल्लाह ये रिपोर्ट करेंगे कि इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा जो है। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है जो मैं पढ़ रहा था इसको कल रात, तो वो इंशाल्लाह आपसे आज नहीं तो कल इंशाल्लाह जरूर आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि हम अपनी
फटाफट
खबरों की तरफ चलते हैं क्योंकि देखें खबरें ठंडी हो गई ना, मजा नहीं आता।
दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, जिनके दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसेस सागा में है, इसका नंबर है 9052323663, और एक ओकविल में है, इसका नंबर है 9052262294। आप इस पे जाएं और एंजॉय का मजा लें। इसके अलावा जिनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, इसमें आप कोई भी अपने इवेंट्स कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये फैसिलिटी है। 32-room लग्जरी होटल है। इट इज लोकेटेड एट 2935 रियू रोड मिसिसागा। इनका नंबर है 6479653823। और जनाब राजा बाजा बिल्कुल वो कहते हैं जी मेरे पास आएंगे तो मैं आपको राइट कवरेज दूंगा ऑटो की और होम की और बहुत सारे आपके पैसे भी मैं बचाऊंगा। राजा बाजा जी जो है ऑल स्टेट के साथ काम करते हैं और इनके पास अगर आपको इनकी सुविधाएं चाहिए राजा बाशा जी की तो आप इनको कॉल करें एट 6472903773 पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके जनाब, हम अपनी खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टैट्स कनाडा की आज ये खबर आई थी और अगेन मुझे बड़ी हैरत हो रही है। कह रहे हैं जी कनेडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो की है 0.2% से ड्यू टू एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग पब्लिक सेक्टर रिटेल होलसेल ट्रेड ऑयल एंड गैस। वही जो हम बार बार बताते हैं कि भाई ये जो है चीजें ऑयल एंड गैस के साथ ही गैस के साथ इनफैक्ट रिलेटेड हैं। गैस की प्राइस नीचे आएगी तो आपकी इकोनॉमी ठीक होने लगेगी, ऊपर जाएंगी प्राइसेस तो आपकी शायद इकोनॉमी जो है वो नीचे आने लगती है। बहरहाल एनीवेज ये जो है आज उनकी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा जी कि ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का जो एक्सपेंशन है उसने इस इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा हिस्सा डाला है। इट रोज बाय 1.5% और GDP ग्रोथ इसमें जो फिर आई थी एनुअल रेट पे 2.2% रही। उन्होंने कहा जी कि ये जो ग्रेजुएट्स और न्यू कमर्स जो है अलबत्ता उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अभी भी पिछले साल से ऊपर है और 6.4% को टच कर रहा था जून में। बैंक ऑफ कनाडा ने वैसे तो रेट्स कट किए हैं आपको पता ही है, लेकिन फिर भी 4.5% बेंचमार्क जो रेट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो इसलिए कुछ चीजें जो हैं अभी भी मार्केट के अंदर अच्छे नजर नहीं आ रही हैं। ہیملٹن پولیس جو ہے وہ اب ایک 24 سال کے لڑکے کو ڈھونڈ رہا ہے جس کو کہ 11 ایئرز کا سینٹنس دیا گیا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہی از ریکوائرڈ ان فیٹل ہٹ اینڈ رن کیس ان 2021. ہوا یہ تھا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا لمبرج روڈ ایسٹ میں اپر نیل ورتھ ایونیو کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی گاڑی یہ جو تھی اس کی یو ٹرن لے رہی تھی اور اس نے ایک موٹر سائیکلسٹ کو ہٹ کیا تھا, اور وہ جو ہے اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ اس کی گاڑی کے نیچے چلا گیا تھا, پھر یہ اس کو 100 میٹر تک ڈریگ کرتا رہا, پھر یہ گاڑی میں سے نکلا اور بھاگ گیا وہاں سے. فیضان علی اس کا نام ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کے اوفینسز جو تھے 17 مئی 2021 کو تھے, اور یہ بھاگ گیا تھا لیکن اس کو اریسٹ کر لیا گیا تھا اور پھر اس کو کورٹ میں بلایا گیا تھا لیکن یہ کورٹ میں پھر نہیں آیا تھا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ذرا ڈینجرس ہو سکتا ہے تو آپ اس کے پاس نہ جائیں, اگر آپ کو پتا چلے صرف 911 کو امیڈیٹلی کال کر کے بتائیں. یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہی از اے ساؤتھ ایشین, اس کی ہائٹ جو ہے 5'9" ہے اور اس کا ویٹ جو ہے 194 پاؤنڈز ہے. تو آپ تصویر ہم آپ کو جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو ہم دکھا رہے ہیں, تو اگر آپ کو یہ نظر آئے کہیں پہ بھی تو آپ فوراً پولیس کو بتائیں. آنٹیریو جو ہے آفیشلی اینڈ کر رہا ہے COVID-19 کا جو ویسٹ واٹر سرویلنس پروگرام تھا, آج سے ایز وی اسپیک July 31st سے. اب اس کے اوپر جو ہیں بہت سارے اعتراض آ گئے ہیں. ڈاکٹر فواد رزاق جو ہیں فارمر سائنٹیفک ڈائریکٹر آف COVID-19 آنٹیریو سائنس ٹیبل, وہ کہتے ہیں جی یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ڈیسیجن ہے, یہ بہت ہی زیادہ یوزفل پروگرام تھا جس سے کہ ہم مانیٹر کرتے تھے پوٹینشیل تھریٹس جو تھے COVID-19 کے, انکلوڈنگ H5N1 ایوین فلو. آنٹیریو کے انوائرمنٹ منسٹری نے کہا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے ہم اس کو اس لیے بند کر رہے ہیں کیونکہ پبلک ہیلتھ ایجنسی آف کینیڈا جو ہے وہ اپنا ایکسپینڈ کر رہی ہے ویسٹ واٹر سرویلنس سائٹس آنٹیریو کے اندر, لیکن ایجنسی اسپوکس پرسن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پلان جو ہے صرف یہ جو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں سروسز یہ صرف 4 آنٹیریو سٹیز میں ہو رہے ہیں اور 4 ایگزٹنگ سائٹس جو ہیں وہ ٹورانٹو کے اندر ہیں تاکہ یہ چیزیں ڈپلیکیٹ نہ ہوئیں, تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ ان کا غلط ڈیسیجن ہے کیونکہ یہ چیزیں مانیٹر نہیں ہو سکیں گی. اور اب تو فلو سیزن بھی آ رہا ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم فلو سیزن سے پہلے جو ہے یہ سرویلنس جو ہے وہ شاید اسٹارٹ کریں گے یا اس کو بڑھا دیں گے, ایٹ لیسٹ ایکسپینڈ کریں گے. رزاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کمیونٹیز کے اندر یہ وائرس کی مانیٹرنگ ہوتی تھی لیکن اب اس کو مانیٹر کرنا وائرس کو مشکل ہو جائے گا. اے ایف پی کی یہ رپورٹ ہے جی, اور اس کے مطابق یو کے جو ہے یو کے کے اندر بھی بہت ہی زیادہ طوفان ہی آیا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی وہاں پہ اٹیکس ہوتے رہتے ہیں. وہاں پہ آج پرائم منسٹر کائر سٹارمر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وائلنس ہوئی ہے مسجد کے باہر, یہ جو ان کا علاقہ ہے ایک سمال ٹاؤن ہے ساؤتھ پورٹ کا لیورپول کے پاس نارتھ ویسٹرن یو کے اندر, یہ بالکل اس کو جو وائلنس ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ جو میس سٹیبنگ ہوئی تھی جس میں کہ 3 بچے جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بہت سارے پولیس آفیسرز جو ہیں انجر ہوئے تھے, یہ بالکل ان کالڈ فار ہے اور کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہے. 39 کے قریب ان فیکٹ جو آفیسرز تھے وہ انجر ہوئے تھے اور 8 اس میں سے سیریس تھے. اور یہ کہتی ہے یو کے کی گورنمنٹ کہ اس کو لگ رہا ہے کہ جیسے جو فار رائٹ انگلش ڈیفنس لیگ کے سپورٹرز ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو میس سٹیبنگ ہوئی تھی یہ اس وقت ہوئی تھی جس وقت ایک جو ہے وجل تھا جو جا رہا تھا جو کہ ٹریبیوٹ پیش کر رہا تھا, یہ جو میس سٹیبنگ ہوئی تھی ٹائلر سوئفٹ کے کانسرٹ کے اندر جہاں پہ کہ 5 بچے اور 2 ایڈلٹس جو تھے وہ بڑا کریٹیکلی ہرٹ ہوئے تھے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اب دوسری ہوئی ہے, تو یہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ بڑا ہی یہ غلط کام ہے جو ہو رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سخت الفاظ جو ہیں پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہ ان کو بڑے اس کی جگہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں اور ان کو جو ہے وہ پنش کیا جانا چاہیے. کافی علاقے میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی, جو ہماری تصویریں دیکھ رہے تھے شاید ٹی وی پہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو گھر بن رہا ہے, گھر نہیں بن رہا تھا, یہ علاقے میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی تو پھر اس کو فکس کرنے کی علاقے میں لوگ جو ہیں وہ کر رہے تھے. بلومبرگ نیوز مارننگ کی جو کنسلٹیٹو ایک پول آیا ہے نیا, اس کے مطابق کمالا ہیرس جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب سے آگے چل رہی ہیں, اور ان فیکٹ جو 4 کی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان میں وہ آگے ہیں اور ٹرمپ صاحب صرف 2 اسٹیٹس میں ان سے آگے ہیں. جو ہیرس ہیں وہ مشیگن میں 11 پوائنٹس ٹرمپ صاحب سے آگے ہیں, 2 پوائنٹس اریزونا میں اور 2 پوائنٹس ہی وسکانسن اور نیویڈا میں آگے ہیں. ٹرمپ صاحب 4 پوائنٹس آگے ہیں پینسلوینیا میں, 2 پوائنٹس نارتھ کیرولائنا میں ہیں. یہ دونوں جو ہیں دے آر ٹائڈ ان دا اسٹیٹ آف جارجیا, और वो कह रहे हैं जी कि ये है कमला हैरिस का अभी जो एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो भी जब इनके साथ जुड़ेगा तो इनके जीतने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का शायद ख्याल है कि एक शायद एक ज्यू अपना जो साथी है ये चुनेंगी, तो जाहिर है कि जो रिच जो है ज्यू कम्युनिटी वो फिर इनको जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सुपर पीएसी प्रोग्रेस एक्शन फंड, ये भी इन्होंने भी एक अपना किया है पोल, उसके भी मुताबिक जो है ये लीड कर रही हैं ट्रंप साहब से 48% से, और ट्रंप साहब एक पॉइंट पीछे हैं इनसे 47% इन जॉर्जिया। रॉयटर्स इप्सोस पोल जो है उसमें भी ये लीड कर रही हैं ट्रंप से 43% और जो ट्रंप साहब हैं वो 42%, तो हर जगह पे एक एक दो दो पॉइंट्स जो हैं ट्रंप साहब इनसे पीछे हैं जितने भी पोल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब ने जो अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना है उससे लोग जरा ज्यादा खुश नहीं हैं, तो शायद इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर काफी असर आ रहा है। द गार्डियन की ये खबर है जी, और ये भी बहुत ही खतरनाक खबर है, क्योंकि एक यूके की गवर्नमेंट की फेडरल रिपोर्ट सामने आई है जिसके के मुताबिक 973 इंडिजिनस किड्स जो थे दे डाइड इन बोर्डिंग स्कूल्स। अब आप बोलेंगे कि ये क्या मैं कनाडा की खबर सुना रही हूं इंडिजिनस, नहीं, दिस इज यूके के बोर्डिंग स्कूल्स जो हैं, दिस इज नॉट रेजिडेंशियल स्कूल्स इन कनाडा, दीज आर बोर्डिंग स्कूल्स इन यूके, जिसके के अंदर 973 इंडिजिनस किड्स जो थे उनकी डेथ हुई थी, और अब कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को इनसे सॉरी बोलना चाहिए। ये जो रिपोर्ट थी ये कमीशन की गई थी जो है ये इनकी जो सेक्रेटरी है डेब हॉलैंड, सॉरी ये रिपोर्ट यूके की नहीं यूएस की है, यूएस आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस, यूएस की जो इंटीरियर सेक्रेटरी है डेब हॉलैंड, उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत सारी मार्क्ड और अनमार्क्ड ग्रेव्स जो हैं 65 के करीब जो हैं वो हमें मिली हैं, और हमारे मुल्क के अंदर 400 बोर्डिंग स्कूल्स थे और जो बाकी के स्कूल्स हैं उनको अब ढूंढा जा रहा है। ये बहुत सारे बच्चे जो थे यहां पे जब इनको बोर्डिंग स्कूल में डाला गया था तो ये मर गए थे, इसके बारे में कहा गया था जी या तो ये सिक हो गए हैं या इनके एक्सीडेंट्स हो गए हैं या जो इनको अब्यूज करते हुए इनकी डेथ हो जाती थी। तो ये जो है इनकी अमरीका की भी 150 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है, और ये सारी की सारी चीजें और कॉन्वर्सेशन जो है मुल्क के अंदर यूएस में 1969 में शुरू हुई थी। आपको पता ही है कि अमरीका ने जो रेड इंडियंस के साथ भी किया था दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हॉरिफाइंग। इसमें यह कहा गया है कि उस जमाने के जो बच्चे अगर जिंदा रह गए हैं लड़के और लड़कियां वो बेतहाशा ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हम जिस वक्त बच्चे थे तो हमें कहा जाता था हम अपनी ना तो वैल्यूज ना ट्रेडिशंस किसी चीज को हम फॉलो नहीं कर सकते, ना तो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, और हमें बहुत ज्यादा फिजिकल सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल अब्यूज जो है वो दिया जाता था। तो अब कनाडा के बाद यूएसए में भी ये रिपोर्ट आ गई है, तो जनाब आप देख लें कि ये ह्यूमन राइट्स के जो बड़े मतवाले बनते हैं इनके अपने मुल्कों में ये लोग क्या करते रहे हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर जनाब आज नेशनल डे ऑफ मोर्निंग मनाया गया है, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि बहुत ही जो है वो राइट्स हो रहे थे उसके स्ट्रांग किस्म के, क्योंकि स्टूडेंट्स के, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जो कोटा सिस्टम इसने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये बिल्कुल फेयर नहीं है, जिसमें के कहा गया था कि 71 के जो शहीद हैं उनके बच्चों को गवर्नमेंट में जॉब्स दी जाएंगी और बाकियों को जो है नहीं दी जाएंगी। तो उसके अंदर जो ये राइट्स हुए थे बड़े वायलेंट किस्म के, इसके अंदर 150 लोगों की डेथ्स हुई थी, तो उसी के लिए आज ये अफसोस मनाया जा रहा था। ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने भी ये एक्नॉलेज किया है बांग्लादेश में कि यस इतनी डेथ्स यहां पे हुई हैं। आज जितने लोग जहां पे मोर्चा निकाले हुए थे उन्होंने ब्लैक बैजेस पहने हुए थे, और बहुत सारी आज प्रेयर्स जो थी ऑर्गेनाइज की गई थी ना सिर्फ मॉस्क्स में बल्कि टेम्पल्स और चर्चेस के अंदर भी। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने बैन कर दिया है जमात इस्लामी को, और उनको कहा जी कि इनके जो स्टूडेंट्स जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ जो है अब एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब जिधर भी आप देखें बस लड़ाई मार कुटाई की जो है आपको खबरें सुनाई दे रही हैं। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डरहम समर फेस्ट 2024। ये हो रहा है अगस्त 31 से 1 सितंबर के बीच में, 1 बजे से लेकर 11 बजे तक, और ये जो है हो रहा है यहां पे जो विटवी के मेयर की कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड है उनके जो है कोऑपरेशन के साथ ये हो रहा है। अच्छा, पहला जो दिन है क्योंकि ये विटवी में हो रहा है तो जो पहला दिन यानी कि अगस्त 31 का है उसमें अहमद जानजेब जो है वो गाने गाएंगे, और फिर दूसरे दिन जो होगा वो गजल कॉन्सर्ट होगा जिसमें मौज़म अली खान साहब जो हैं वो जगजीत सिंह की गजलें जो हैं ये गाएंगे। ये इवेंट जो है 500 विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट विटवी में हो रहा है, और विटवी गो स्टेशन की पार्किंग है इसके साथ बहुत सारी, तो अगर आपको लग रहा है कि पार्किंग के मसले होंगे तो नहीं होंगे, आप उधर अपनी खड़ी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ शावेज खान साहब ए कंसल्टेंट इंक से गवर्नमेंट एड्स जो हैं उन फैमिलीज को ऑफर कर रहे हैं जिनके पास बच्चे हैं 12 इयर्स के नीचे जिनकी एज है, और वो कहते हैं अगर आप सिंगल या ऐसी फैमिली से हैं जिनकी कि 60,000 से इनकम कम है तो आपको गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है, तो आप शावेज साहब को कॉल करें। एंड मूविंग प्लस, अगर आपको अपना घर वर मूव करना है, ऑफिस और कोई आपको जो है वो चीजें अपनी एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो 786 मूविंग प्लस को आप कॉल कर सकते हैं अमीन को, इनका नंबर है 416-786-6000। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, उनको जो ऑलरेडी एफआईए के कस्टडी में है उनके ऊपर जनाब आज बहुत ही खतरनाक किस्म के चार्जेस लगाए गए हैं, टेररिज्म के चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ये रन कर रहे थे डिजिटल एंटी स्टेट कैंपेन, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट थी इस्लामाबाद में उसने अप्रूव किया था इनका 2 दिन का फिजिकल रिमांड, और इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट थी इस्लामाबाद में उसने इनको जो है और दूसरे सस्पेक्ट जो थे उनको 14 डे का जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेजा था फॉर एंटी स्टेट सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा नेटवर्क, उसके बारे में कहा था कि ये रन कर रहे हैं। ऑन जुलाई 22 पुलिस एंड एफआईए के ऑफिशियल्स जो थे वो पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद में घुसे थे और उन्होंने हसन और दूसरे पार्टी लीडर्स को डिटेन किया था जिसमें एक्टिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान है वो भी थे, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया था। इसके साथ साथ पता चला है आपके अहमद वकास जंजुआ पीटीआई के जो कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इंटरनेशनल मीडिया कवरेज उनको भी अपडेटेन कर लिया गया है, तो ये पकड़ धकड़ जो है ये मुल्क के अंदर काफी जारी है। पीएमएलएम गवर्नमेंट ने जनाब आज जिस बिल की द बिग बिल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उन्होंने आज ये बिल मूव किया है नेशनल असेंबली में टू अमेंड इलेक्शंस एक्ट 2017। उसमें उन्होंने कहा जी कि हर वो बंदा जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा था एज इंडिपेंडेंट्स कैन नॉट चेंज देयर एफिडेविट एट लेटर स्टेज and they cannot declare their affiliation with the political party. Bill Act of Parliament जो है जिसको के कहा गया है कि ये foreign जो है वो हरकत में आ जाएगा जैसे ही ये पास हो जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस किया था पीएमएलएन के एमएनए बिलाल कियानी ने, और ये जो बिल है इलेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें उन्होंने कहा जी कि हम सेक्शन 66 जो है इलेक्शन एक्ट में उसको अमेंड करना चाहते हैं, और सेक्शन 104 ऑफ इलेक्शन एक्ट जो है वो भी हम करना चाहते हैं विच डील्स विद द क्लॉज ऑफ रिजर्व सीट्स। पीटीआई के जो एमएनए हैं अली मोहम्मद खान, उन्होंने कहा जी कि ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनके कहने पे ये सारा कुछ किया जा रहा है और उसको फॉरन एक्ट बनाया जाएगा, जिसपे कि नजीर तारर जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम इसको एक्ट बनाएंगे। इसके ऊपर बात करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये बिल जो है ये जो है पार्लियामेंट की लड़ाई करवाएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ, जो कि अच्छी चीज नहीं है। बहरहाल जी, उन्होंने पीटीआई को दीवार के साथ लगाना है और वो लगा रहे हैं, तो अब ये कुछ जो है वो चलेगा। खतीजा शाह, आपको पता ही है कि यूएस सिटीजन थी और उनको भी बड़े अरसे से पकड़ा हुआ है, तो उन्होंने आज कहा है कि वो पीटीआई की जो रिजर्व सीट पे उनको नॉमिनेट किया गया है उसको ज्वाइन करते हुए अपनी जो यूएस सिटीजनशिप है वो तक वो छोड़ देंगी। अपने इंस्टाग्राम पे लिखते हुए उन्होंने कहा जी कि यूएस सिटीजनशिप जो कि मुझे गारंटी करती थी फ्रीडम सेफ्टी अपॉर्चुनिटी वो आसान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान जो है मेरी मां है और यहां के लोग जो है मेरे लोग हैं, ये पाकिस्तान को मैं अपना घर कहती हूं, मैं अपनी लाइफ जो है मैंने यहां पर गुजारी है, तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान को और उसके लोगों को मैं छोड़ दूं, और मैं बहुत सारे ये केसेस में तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं यहीं पर रहूंगी और मैं बड़ा ऑनर्ड फील करती हूं कि इमरान खान साहब ने खुद मुझे जो है वो नॉमिनेट किया है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि मैं उनकी जो होप्स हैं आई लिव अप टू हिज होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, और जो होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस मेरे फेलो सिटीजन्स की भी हैं मेरे से वो भी आई शुड बी एबल टू लिव अप टू देम। तो ये आज इन्होंने सारी बातें कही हैं। आज एक बहुत ही हॉरिफाइंग रिपोर्ट जो है वो आई है, इसको भी मैं एक स्पेशल रिपोर्ट बनाना चाहती थी लेकिन आज वी हैड सम अदर थिंग्स एट हैंड, तो मैंने सोचा कि इसको सुनाया आपको जरूर जाए लेकिन स्पेशल रिपोर्ट के तौर पे नहीं। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, उसने इन्फॉर्म किया है कि गल्फ कंट्रीज में जो पाकिस्तानी जो वर्क फोर्स है जो काम कर रही है वो बिल्कुल अब गल्फ कंट्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये जो गल्फ कंट्रीज जैसे कि कतर, बहरेन, ओमान, सऊदी, ये जो मेन कंट्रीज थे, यहां पे बहुत सारे गल्फ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा तंग हैं इनकी हरकतों की वजह से, नमाजें पढ़ने जाते हैं लंबी लंबी और वापस नहीं आते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, फड्डे करते हैं, तो उनको हायर करने के बजाय अब वो बांग्लादेश या दूसरे कुछ जो कंट्रीज हैं उनके लोगों को प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। आज जब ये मीटिंग शुरू हुई जिसको के चेयर कर रहे थे सेनेटर जीशान खानजादा, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि गवर्नमेंट बड़े अरसे से ये बहुत बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है जहां से कि हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता था उसको जो है इग्नोर कर रही है। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डॉक्टर अरशद महमूद ने फिर इसके ऊपर सारी डिटेल्स दी। उन्होंने कहा 50% क्राइम जो यूएई के लेबर फोर्स में होता है दैट इज लिंक्ड विद पाकिस्तानीज, यानी कि अगर 100 क्राइम हुआ है तो उसमें से 50 क्राइम जो था वो पाकिस्तानियों ने किया था। 50% क्राइम इन यूएई जो होता है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, बाकी 50% में तमाम बाकी नेशनैलिटीज है। कैन यू इमेजिन। उन्होंने कहा जी कि यूएई की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया था और इनअप्रोप्रिएट इनका जो बिहेवियर है उसके ऊपर भी बात की थी, जिसमें कि ये शामिल था कि ये औरतों की बीचेस के ऊपर तस्वीरें खींचते हैं उनकी मर्जी के बगैर, विच इज एब्सोल्यूटली अनकॉल्ड फॉर। और फिर जो है उन्होंने कहा जी कि हमने वैसे तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के हम अंदर लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी वर्कफोर्स एक्सट्रीमली अनस्किल्ड है, उनको अंग्रेजी नहीं आती है, जाहिर है वो तो हमें पता ही है, और बहुत सारे उनको जो लेटेस्ट जो लेबर के जो रूल्स हैं उनके बारे में नहीं पता होता है, उसकी वजह से जो है गल्फ कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा शिकायत कर रही हैं। बांग्लादेश के जो लेबर है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उसको पता है कि हमने लेबर लॉज क्या है और हमने कैसे बिहेव करना है और हमें बांग्लादेश से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, पाकिस्तान जो है उसको फॉलो करना चाहिए। महमूद साहब ने कहा कि जी पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है इट इज 10.7 मिलियन लोग मुल्क से बाहर हैं और काम कर रहे हैं सऊदी में, यूएई में, यूएस, यूके, कनाडा के अंदर, और यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत जो है उन्होंने बहुत ज्यादा शिकायतें की हैं पाकिस्तानी लेबर के बारे में। सितंबर में लास्ट ईयर जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ पाकिस्तानी बेगर्स जो थे दे वर फाउंड इन इराक एंड सऊदी अरेबिया, वो वहां पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, इराक में जो शिया मुस्लिम है और सऊदी अरेबिया में जो दूसरे सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो लोग जाते हैं उमरा का वीजा लेके और फिर वहां पे जो है मांगने लगते हैं। सऊदी अरेबिया के बारे में उन्होंने कहा जी कि 90% बेगर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, 10% किसी दूसरी नेशन से हैं। इसके ऊपर बात करते हुए सेनेटर नासिर अब्बास ने कहा जी कि बहुत सारे पाकिस्तानी इलीगली इराक भी रह रहे हैं जो कि पैसे कमाने वहां पे गए थे, तो मिनिस्ट्री अगर उनकी हेल्प कर सकती है तो उनको वापस लाए क्योंकि उनको बहुत बुरा ट्रीटमेंट का सामना है। सेनेटर जीशान ने कहा जी कि वहां पे इटली में भी बहुत सारे पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं और वैसे तो वो अपने आप को नॉन पाकिस्तानी कहते हैं बट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एम्बेसी दे आर स्टिल पाकिस्तानी सिटीजन, क्योंकि जाहिर है कि उनके पास लीगल स्टेटस वहां पे नहीं है, तो अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो उनको वापस लाएं। तो आज ये बहुत ही ज्यादा स्केदिंग किस्म की रिपोर्ट जो है ये सामने आई है जिसकी के बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब कोई हालात अच्छे नहीं है, आपको पता ही है कि लोकसभा के अंदर बहुत ज्यादा कल भी लड़ाई हुई थी जिसमें कि बीजेपी के जो लॉ मेकर थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो राहुल गांधी को कह दिया कि तुम्हारी तो भाई हमको कास्ट ही नहीं पता है, तुम कौन हो, नाम उनका लिए बगैर, कि जिसको पता ही नहीं है उसका कास्ट क्या है वो कास्ट के बारे में कैसे बात करेगा। तो राहुल गांधी जी ने कहा था तुम मेरे ऊपर कितने भी हमले करो मैं इस मसले के लिए लड़ता रहूंगा। अब इस बात के ऊपर जो है बहुत ज्यादा वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो चलते रहे हैं। अनुराग ठाकुर साहब ने जब ये बात की और मोदी जी ने फिर उसकी बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा कि मस्ट हियर है ये राहुल सॉरी अनुराग ठाकुर की जो स्पीच है इट इज अ मस्ट हियर। तो उसके ऊपर कांग्रेस ने आज प्रिविलेज नोटिस जो है वो जारी किया है। कांग्रेस के एमपी और फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं उन्होंने फिर एक लेटर लिखा लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब को, और उसमें उन्होंने चन्नी साहब ने कहा कि ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल इन्होंने लैंग्वेज यूज की थी जिसको कि जाहिर है कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से बाद में निकाल लिया गया था, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक्स के ऊपर ये पूरी की पूरी स्पीच जो है वो शेयर की थी तो अब ये बेतहाशा जो है फैलती चली जा रही है, जिसकी की वजह से राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में उनकी जो है बेइज्जती हो रही है और जो कि सही नहीं है, होना ऐसे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि इसलिए अंडर प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स जो है मोदी जी के ऊपर एक मुकदमा चलाने की जरूरत है। इसके साथ साथ इंडिया अलायंस जो थी उसने भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया ठाकुर साहब के कॉमेंट्स के ऊपर और फिर वो अपनी सीटें छोड़ के जो हाउस का वेल होता है वहां पे आ गए और उन्होंने कहा जी कि इनको बोलें और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बोलें, मोदी जी को भी बोलें और ठाकुर साहब दोनों को बोलें कि वो राहुल गांधी को सॉरी बोलें। ये इतनी ज्यादा यहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि जो स्पीकर थे उनको फिर ये जो प्रोसीडिंग्स थी वो नून तक के लिए एडजर्न करनी पड़ी। और जो है जब ये वापस आए तो उस मौके पे फिर यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जो हैं उन्होंने ऑपोजिशन के बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किया। उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी जो हैं कास्ट 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 सरा सरा दिन रोते रहते हैं और हर दिन रोते रहते हैं, कोई भी चीज ये जो है ये होने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज बहुत बड़े एलिगेशन लगाए कांग्रेस पे। उन्होंने कहा जी कांग्रेस मुल्क को कोशिश कर रही है पूरी कि इसको कमजोर किया जाए, और उन्होंने कहा जी कि आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है। और उन्होंने कहा जी इसीलिए ये आर्मी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो है ये जो है ये चाहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, इस मुल्क में वायलेंस और एनार्की जो है वो फैल जाए। हम तो रूल्स को फॉलो करेंगे लेकिन क्या इंडिया अलायंस भी रूल्स को फॉलो करेगी या नहीं। अब जाहिर है जब इन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस मुल्क को तोड़ने के पे काम कर रही है, अब जाहिर है कि कांग्रेस का कल रिएक्शन आएगा जो हम फिर आपको सुनाएंगे। हमारी बाजी जो है शी इज बैक जी, कंगना रनावत साहिबा, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी तो बहुत दिनों से उनकी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कंगना रनावत साहिबा ने भी आज जनाब राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किए और अपने इंस्टा स्टोरीज के ऊपर उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि क्या तुमको अपनी खुद की कास्ट पता है। ये भी बहुत ही बिलो द बेल्ट इनके कमेंट्स थे। बहरहाल जी कंगना तो आपको पता ही है बाजी तो बाजी है। फिर तो उसने कहा जी कि क्या आपको अपनी कास्ट के बारे में पता है, क्या तुम्हें अपने ग्रैंड फादर्स की कास्ट के बारे में पता है, क्योंकि तुम्हारा तो एक ग्रैंड फादर जो था वो मुस्लिम था, तुम्हारा बाप जो था वो पारसी था, तुम्हारी मम्मी जो है वो क्रिश्चियन है, तो तुम क्या हो फिर। तो वो कहते हैं जी मुझे लग रहा है कि तुम जो है एक टेम्पर्ड पास्ता हो, यानी कि पास्ता हो तुम जिसमें बहुत सारी वो चीजें डाली होती हैं जिसके अंदर करी लीव्स हैं टू मेक राइस एंड लेंटिल्स। तो वो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या हो और तो तुम्हें कैसे पता हो सकता है किसी के कास्ट के बारे में और तुम क्यों इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, और तुम पब्लिकली ऐसे लोगों के कास्ट के बारे में कैसे ऐसे क्रूड मैनर में बात करोगे। और फिर एंड पे उन्होंने कहा शेम ऑन यू राहुल गांधी। तो मतलब जो लड़ाई चैकड़ा है जनाब वो काफी बढ़ गया है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है जी, कायरा अडवाणी साहब जो हैं साहिबा जो हैं जनाब शी हैज टर्न्ड 33 टुडे, और जो है इंस्टा स्टोरीज के ऊपर उन्होंने बहुत सारी जो उनको विशेज आ रही थी ना सिर्फ इंडस्ट्री की बल्कि उनके फैंस की, जैसे करीना कपूर, शाहिद कपूर, परिणीति चोपड़ा, अथिया सेठी और दूसरे, उन सबसे उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और अपने फैंस का भी। और एक जगह पे देखी जा रही थी कि अपना चॉकलेट केक काट रही थी और बहुत सारे जो थे वो फ्लावर बुकेज थे, और दूसरी तरफ ऑरेंज केक काट रही थी और रोज गोल्ड एंड सिल्वर फॉयल बलून्स उनके पास थे, एक वाइट सा आउटफिट उन्होंने पहना हुआ था। और इसके साथ ही जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने भी लिखा हैप्पी बर्थडे, लव यू आर द काइंडेस्ट सोल आई नो। महेश भट्ट साहब जो हैं जनाब उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब जो थे नाना भाई वो गुजराती थे और ब्राह्मण थे, और मेरी मां जो थी शीरी मोहम्मद अली वो शिया मुस्लिम थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अम्बेरस थी कि वो मुसलमान थी और वो बहुत ज्यादा वरिड थी कि जब मैंने अपनी बेटियों के नाम आलिया और शाहीन मुस्लिम नेम्स रखे थे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि इनका जो है वो क्या फ्यूचर है। उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो जनोई क्लैड मैन थे। वो आपको पता है कि जनोई वो होता है वो जो ब्राह्मण जो थ्रेड्स पहनते हैं ना उसको जनोई बोलते हैं। तो कहते हैं जी ही वॉज अ जनोई क्लैड मैन, लेकिन वो कभी भी ये प्रिटेंड नहीं करते थे वो सेक्युलर, यानी कि वो बड़े हिंदू जो थे वो मजहब को फॉलो करने वाले बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के थे। उन्होंने कहा जी लेकिन मेरी मां और मेरा बाप दोनों बड़ा स्ट्रिक्टली अपने फेथ जो है उनको फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे को उन्होंने जोर नहीं दिया कि वो दूसरे का मजहब अपनाए। मेरी मां जो है बड़ा सारा टीका लगाती थी, साड़ी पहनती थी और बहुत कुछ छुपाती थी जब मैं छोटा था, तो मुझे फील होता था वो बहुत कुछ छुपा रही है। तो मैंने उनसे एक दफा पूछ लिया, मैंने कहा आप क्या छुपा रही हो, तो उसने फिर मुझे एक दिन बता दिया। और उन्होंने कहा जी खासतौर पे जिस वक्त ये कॉम्यूनल राइट्स हो रहे थे 1992 के, तो उस वक्त जो है वो बड़ी परेशान थी कि अगर इसने अपनी बेटियों के नाम भी मुस्लिम रखे और ये भी बता दिया कि मेरी मां मुसलमान है तो शायद कोई इसके ऊपर जो है कोई अटैक करके इसको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये आज उन्होंने जनाब कुछ ऐसी बातें की हैं। पाकिस्तान टीम जो है जी उसने तीसरी विन ली है और उसने आज कुवैत को हराया है 3-0 से इन 15th एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप इन बारेन। टीम जो है अब उसने क्वालिफाई कर लिया है टॉप 8 राउंड के अंदर और अब उनका जो लास्ट मैच है वो ग्रुप डी के साथ जो है वो होंगे और दे विल बी नाउ पार्ट ऑफ ग्रुप एफ। इन्होंने जीती है। फिर से मैं बता दूं, एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, और अब इनके जो अपकमिंग मैचेस हैं वो टॉप 8 के साथ होंगे, और इसमें जो है चाइनीज टाइपाई भी हैं और जापान भी है, और ये मैचेस शुरू होंगे अगस्त 1st और 2nd में। पाकिस्तान जो है अपना उसने फर्स्ट मैच जो था वो जीता था साउथ कोरिया के अगेंस्ट, और इसके बाद इन्होंने इंडिया को जो है वो हराया था 3-0 से सेकंड मैच में। तो आज इन्होंने ये तीसरा मैच 3-0 से कुवैत के अगेंस्ट जीता है, तो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। इसके अलावा पाकिस्तान जो है उसने कहा जी कि पाकिस्तान अंडर 19 के जो मैचेस हैं, जो टीम है वो 7 मैच ओडीआई ट्राई सीरीज खेलेगी अगेंस्ट यूएई एंड अफगानिस्तान फ्रॉम नवंबर 13-26। ये सीरीज जो है ये पूरी की पूरी यूएई के अंदर होस्ट की जाएगी, और अभी तक इसके वेन्यूज बताए नहीं है, ये वेन्यूज बाद में बताएंगे। ये जो सीरीज का ओपनर होएगा वो पाकिस्तान और यूएई के बीच में खेला जाएगा ऑन नवंबर 13th। दोनों टीमें जो हैं वो 6 टीमें खेलने के, सारी टीमें, तीनों टीमें 6 मैचेस खेलने के बाद जो है फाइनल में जाएंगी, और नवंबर 26th को फाइनल होएगा। ये सीरीज जो है ये इनको प्रिपेयर करेगी फॉर एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 जो कि दिसंबर में खेला जाएगा इस साल में, और इसकी जो प्रॉपर डिटेल्स और डेट्स हैं वो बाद में जो है वो रिवील की जाएंगी। एंड एज वी मैंशनड, वकार यूनस साहब जो हैं उनको मेजर रोल मिल गया है पीसीबी में। ही विल सर्व एज एडवाइजर फॉर क्रिकेट अफेयर्स टू पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, और ये कोलैबोरेट करेंगे विद सेलेक्टर्स, कोचेज और टेस्ट सीरीज के अंदर जो प्रेपरेशन होती है उसमें, और जो अब और भी बहुत सारे डिसीजन बनाएंगे जैसे कि टीम के अनाउंसमेंट्स और कैंप डिसीजन और इस तरह की चीज। पाकिस्तान का जो अब आने वाला मैच है वो बांग्लादेश के साथ है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम इस्लामाबाद में आने वाली है अगस्त 17 को, और इसके अंदर टीम कैसा खेलेगी और इसको क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक जो है एनहांसमेंट क्या करने की जरूरत है, तो पीसीबी ने कहा कि इनका जो एक्सपीरियंस जो है वो टीम को गाइड करेगा, लेकिन ये जाहिर है कि इनका भी टेस्ट होगा एज एडवाइजर टू पीसीबी जब बांग्लादेश की टीम के साथ पाकिस्तान की टीम अब खेलेगी। कनाडा विमेंस रग्बी सेवन्स टीम जो है जी उसने विन किया है सिल्वर एट पेरिस ओलंपिक्स, और इन्होंने लूज किया 19-12 से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। कनाडा ने बीट किया था होस्ट फ्रांस को 19-14 से क्वार्टर फाइनल्स में, और इन्होंने जो है कल अपसेट किया था जो फेवरेट टीम थी ऑस्ट्रेलिया, उसको 21-12 से सेमीफाइनल्स में हराया था। इसके साथ साथ यूएस जो थी उसने बीट किया था ऑस्ट्रेलिया को ब्रोंज के लिए, तो यानी कि जो गोल्ड है वो न्यूजीलैंड के पास और सिल्वर कनाडा के पास, और ब्रोंज जो है वो यूएस ने इसके अंदर रग्बी के अंदर जीता। हम लेते हैं जी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुल्तान भाई। सुल्तान भाई आपको पता ही है होते हैं वहां पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे, आप प्लीज उनके पास जाएं, बहुत ही जबरदस्त किस्म की उनके पास जो है डील्स होती हैं जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट के ऊपर इनका जो है वो ये स्टोर है, और इनका भी एक ही स्टोर है, जैसे वो ऑक्सफोर्ड स्कूल एक ही है ना, इनका भी एक ही स्टोर है, और आप इनको कॉल भी कर सकते हैं सुल्तान भाई को एट 9054502828, आप जाएं और लें। और हम जनाब अब आपको सुनाते हैं स्पेशल रिपोर्ट, और ये स्पेशल रिपोर्ट जो है आज की बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इस्माइल हानिया साहब के ऊपर है ये, इनका जो असैसिनेशन हुआ, कैसे प्लान हुआ, किसने किया, कैसे ये चला, इस सारी हम आज आपको चीज बताएंगे। इसके ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, अभी हमारे जो एक्सपर्ट आएंगे उनसे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि दुनिया इस वक्त कहां चल रही है। मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता ही है कि खासतौर पर ये जो 3-4 बड़े मुल्क हैं, कुवैत, बहरीन, 5-6 आप कह लें, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर एंड सऊदी अरेबिया, ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये आपको पता है इन्होंने नेक्स्ट 10 नहीं 15 नहीं 50-50 साल की प्लानिंग करके रखी हुई है कि ये अपने मुल्कों को कैसे चलाएंगे, क्या ये स्पोर्ट्स लेकर आएंगे, क्या ये इवेंट्स लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके मुल्क में कैसा होगा, उस सारे की प्लानिंग करके ये बैठे हुए हैं। इनकेस ये वॉर शुरू हो जाती है और ये बहुत ज्यादा रीजन के अंदर फैल जाती है, यानी कि गाजा से निकल के, यानी पैलेस्टाइन से निकल के ये चली जाती है लेबनान में, और लेबनान से ईरान में, तो ईरान के तो बिल्कुल पास ही पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया और ये सारा और बाकी मिडल ईस्ट भी बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। आपको पता ही है ऑलरेडी सीरिया और इराक की वजह से काफी ذرا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے مڈل ایسٹ، لیکن یہ باقی کے پانچ کنٹریز ذرا اس میں بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ اگر لڑائی شروع ہو گئی تو پھر یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے بہت 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 زیادہ سفر کرے گا. اچھا جی، یہ اسپیشل رپورٹ جو ہے ہماری جی یہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کا جو اسیسینیشن ہوا ہے ایران میں اس سلسلے میں ہے. حماس نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اب وائڈر ایسکلیشن جو ہے یہاں پہ ہو سکتی ہے، اور اسرائیل نے یہ جو اوفینسو غازہ سے شروع کیا تھا یہ لیبنان میں بڑھایا اور اب انہوں نے ایران تک اس کو پہنچا دیا ہے. ایران کے ریولیوشنری گارڈز جو ہیں انہوں نے کنفرم کی تھی اسماعیل ہانیہ صاحب کی ڈیتھ، اور یہ جو تھے یہاں پہ ایران میں آئے تھے، یہ جو سویئرنگ ان سیرمنی تھی نئے ایرانین پریزیڈنٹ پشتیاں صاحب ان کے لیے یہ یہاں پہ آئے تھے، اور ایران نے کہا کہ ہم نے پوری اس کے اوپر جو ہے ایک انویسٹیگیشن بٹھائی ہے. ایران نے کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ایک باڈی گارڈ جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے ریزیڈنس پہ جو تہران کے اندر تھا. اسی لیے تہران میں آج بہت زیادہ جو ہیں وہ مورچے نکلے ہوئے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیسے کسی کے دوسرے ملک میں آ کے آپ اٹیک کر سکتے ہیں اور کوئی لوگوں کو آپ مار سکتے ہیں. آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ جو تھی رپورٹ بہت زیادہ یہاں پہ یو ایس اور کینیڈا میں جو انڈیا کے ساتھ تھی کہ بھئی آپ کیسے ہمارے ملکوں میں آ کے ہمارے سٹیزنز کو مار رہے ہیں، تو آج وہی بات جو ہے یہ آج تہران میں بھی کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دیا، لیکن اسرائیل کی ملٹری نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ سچویشنل اسیسمنٹ جو ہے شروع کی ہے، ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایسا ہوا ہے ہماری طرف سے کہ نہیں ہوا ہے، اور گائیڈ لائنز جو ہے ہم جلدی اپنے سویلینز کو دیں گے کہ ان کو کیا لینے کی ضرورت ہے. یہ ساری جو اسیسمنٹس ہیں یہ تو چلتی رہیں گی، لیکن یہ جو واقعہ ہے بہت بڑا ہے، اس لیے کہ صرف 24 آورز پہلے اسرائیل نے حزب اللہ کے جو کمانڈر تھے فواد شکر ان کو جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ الیجلی اسرائیل آکیوپائڈ گولان ہائٹس جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کر کے ان کو مارا تھا، اور ایز وی سپیک ابھی تک جو تھی ان کو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی فواد شکور کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ ان کی جو لاش ہے فواد شکور صاحب کی وہ ربل جو ہے سدن سبب ایک جو ہے اس میں ایک گھر کے نیچے سے بیروت میں اب مل گئی ہے. سینئر حماس افیشلز جو ہیں سمی ابو زہری انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کلنگ ہے یہ گریو ایسکلیشن ہے، اور اس کا مطلب تھا حماس کی کمر توڑنا، لیکن وہ توڑ نہیں سکے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ حماس ایک کانسیپٹ ہے، وہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، اور ہم جس فلسفی کو فالو کرتے ہیں ہم اسی رستے کے اوپر چلتے رہیں گے، اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ وکٹری ہماری ہوئے گی. حماس کے ڈپٹی چیف جو ہیں غزہ کے اندر خلیل ارحیا انہوں نے بھی کہا جی کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ اسرائیل نے مسل کا اٹیک کیا تھا ہانیہ صاحب کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کی گھر کی جو دروازے اور کھڑکیاں اور والز جو تھیں وہ بالکل ڈسٹروائے ہو گئی تھیں. اور انہوں نے کہا جی کہ حماس نے کہا کہ ایران اور حماس جو ہیں دونوں ہی ریجنل وار نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ کرائم ان پنش نہیں جائے گا. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے پیلسٹینین پریزیڈنٹ محمود عباس جو ہیں انہوں نے بھی، حالانکہ وہ ان کے رائیول تھے، انہوں نے بھی بڑا کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل غلط کام ہوا ہے اور یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کافی جو ہے اس کے اوپر باقی دنیا میں بھی ڈیمونسٹریشنز نکل رہے ہیں اور کافی جو ہے وہ شور مچا ہے. ان کے جو بیٹے ہیں ہانیہ صاحب کے عبد السلام، انہوں نے کہا جی کہ میرے باپ کے اوپر آلریڈی بھی 4 اسیسینیشن اٹمپٹس ہوئے تھے، یہ جو اپنا جو ملک سے پیار کا جرنی ہے جس کے اوپر یہ نکلا ہوا تھا، اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ یہ شہید ہوئے، تو اللہ نے اس کو اس کی خواہش جو ہے مارٹرڈم کی وہ اس کو نصیب کیا، تو وہ بڑا ہی خود خوش قسمت ہے. ایران کی جو ٹاپ سیکورٹی باڈی ہے انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ایک میٹنگ رکھ رہے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دا اسٹریٹجی کہ ہم کو کیا بنانی ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ جس کسی نے بھی اس کو مارا ہے، کیونکہ ایران کی سوئل پہ مارا ہے، تو اس کو ہارش پنشمنٹس جو ہے وہ دی جائے گی. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کے خون کا بدلہ جو ہے ہم لیں، کیونکہ ہماری ٹیریٹوری پہ اس کو شہید کیا گیا ہے. ایران کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزیشکیاں، جن کی کہ سویئرنگ ان کے لیے یہ آئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ زائنسٹ جو ہیں وہ جلد ہی کانسیکوینسز دیکھیں گے اپنے اس کاورڈلی اور ٹیررسٹ اٹیک کی وجہ سے. یہ جو میجرز لے رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز جو ہیں اب ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئی ہیں، اور اب سوائے لوگوں کو مارنے کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہانیہ صاحب جو ہیں ان کو حماس کا چیف بنایا گیا تھا 2017 میں، और ये बड़ी ही आसानी से तुर्की और दोहा के बीच में ट्रेवल करते थे और ये जो बड़े ब्लॉकेड्स लगा दिए जाते थे गाजा स्ट्रिप में उनसे भी स्नीक आउट करके ये आते थे, ईरान में भी बात करते थे, ईरान के लीडरों के साथ मिलते थे और दोहा के अंदर जाके भी उनके लीडर्स के साथ भी मिलते थे और बात करते थे। इसमें बात करते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने कहा जी कि हमको बिल्कुल नहीं पता था कि इसराइल जो है इसके ऊपर ये अटैक कर रहा है और हम बिल्कुल यानी कि यूएस इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। सिंगापुर के अंदर थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब और उन्होंने कहा जी कि हमारा मेन मकसद है गाजा के अंदर वॉर को रोकना ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है रीजन के अंदर ना बढ़े। बड़ी जल्दी याद आ गया भाईजन दोनों। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन साहब उन्होंने भी कहा जी कि यूएस गवर्नमेंट जो है जो मीडिएट कर रही है टॉक्स विद कतर एंड इजिप्ट वो अब और ज्यादा हार्डवर्क करेगी ताकि इंश्योर करे कि ये तमाम इश्यूज जो हैं डिप्लोमेटिक तरीके से जो हैं खत्म किए जा सके। जाहिर है कि हानिया साहब की जो मौत थी उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा शॉक वेव्स गए, पाकिस्तान ने भी इसको बड़ा जो है वो कंडेम किया और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये जो इसराइल का एडवेंचरिज्म है रीजन के अंदर इसको बंद होने की जरूरत है। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग चल रही है इस मुद्दे के ऊपर ताकि वॉर को ज्यादा ना बढ़ाया जाए। ये मीटिंग जो है सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाई है ईरान ने एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय रशिया चाइना एंड अल्जीरिया। यूरोपियन यूनियन के जो स्पोक्स पर्सन है पीटर सांटो स्टैनो जो है उन्होंने कहा है जी कि दोनों पार्टीज को रेस्ट्रेंट यानी कि ईरान को भी और इसराइल को थोड़ा रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए और कोई भी नेशन और कोई भी कंट्री जो है उसको कुछ हासिल नहीं होता है अगर वो ये लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा। अलबत्ता कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जो कि ये टॉक्स में बैठे हुए थे और काफी दफा हानिया साहब के साथ मुलाकात भी उन्होंने की थी, उन्होंने कहा जी कि अब ये जो हम मीडिएशन करवाना चाह रहे थे इसराइल और हमास के बीच में ये अब मुश्किल नजर आ रही है और इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। कतर ने अलबत्ता इनकी डेथ को एक अगली क्राइम कहा और उन्होंने कहा जी कि इसकी वजह से डेंजरस एस्केलेशन रीजन के अंदर आएगी। कतारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने इसराइल को जो कॉन्स्टेंटली गाजा में सिविलियंस को मार रहा है उसको बेतहाशा कंडेम किया और उन्होंने कहा जी इससे जो है केओस होएगा। अब बहरहाल फ्राइडे को यानी कि परसों फ्राइडे वाले दिन इनका बरियल है दोहा के अंदर और जो है थर्सडे को यानी कि कल तेहरान के अंदर इनको जो है पब्लिक फ्यूनरल सेरेमनी इनकी होल्ड होगी सिम्बॉलिक और काफी उसके अंदर जो है लग रहा है कि फिर लोग जो है बाहर सड़कों पे आएंगे और फिर बरियल दोहा में फ्राइडे को होगा। तो ये थी जनाब इनकी शॉर्ट हिस्ट्री और इसके ऊपर जो है अब चीजें पता नहीं कितनी अब भड़केंगी या लाइफ खैर करे क्योंकि हमारे भी बहुत सारे इंक्लूडिंग माय ब्रदर हमारे बहुत सारे प्यारे जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं तो बस अल्लाह खैर करे सारों की हम यही कह सकते हैं। तो ये थी जनाब हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
तो जनाब ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी और खबरें भी गर्मा गर्म हो गई। थोड़ा सा G20 की भी खबर शामिल कर लें, लाइव मैच चल रहा है और आपको पता है कि वैंकूवर नाइट्स ने टारगेट दिया है 150 रन का जिसे ब्रैम्पटन वुल्फ जो है इस वक्त 13 ओवर्स का मैच जो है वो हुआ है और तकरीबन 83 रन पर इनके भी 4 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए हैं। तो जनाब ये इनको तकरीबन 41 बॉल्स पर जो है 63 रन दरकार हैं ब्रैम्पटन वुल्फ्स को। G20 का सीजन 4 इस वक्त जो है ब्रैम्पटन में जारी और सारी है। तो आज का मुकाबला जो है वो वैंकूवर नाइट और ब्रैम्पटन वुल्फ्स के दरमियान है। ब्रैम्पटन वुल्फ्स की टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है 13.1 ओवर 87 के स्कोर और 4 खिलाड़ी आउट हो गए। तो जनाब जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता रहेगा तो इसकी भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।
लेकिन आमिर जो टारगेट है 150 वो इस ग्राउंड पे काफी है?
शेल्वी टारगेट नॉट बैड, लेकिन अगेन थोड़ा सा स्लो खेला इन्होंने वैंकूवर नाइट्स ने, लेकिन 150 टारगेट्स कम है यू कह सकते हैं, लेकिन बुरा भी नहीं है। लेकिन अब
पिच के ऊपर ठीक है।
हाँ देखिए इस पिच पे वैंकूवर इन्होंने ब्रैम्पटन वुल्व्स ने भी जो है वो स्कोर तकरीबन ऑलमोस्ट 200 यानी 198 भी स्कोर हुआ है जो हाईएस्ट स्कोर इस वक्त यहाँ चल रहा है। तो बाजाहिर स्कोर सही है क्योंकि पिच यहाँ बॉल अभी हम लाइव भी देख रहे हैं बॉल अचानक जो है ना वो बैठ जाती है यानी बहुत आप इस पे प्रॉपर बाउंस नहीं आ पा रहा होता समटाइम। अक्सर प्लेयर्स आउट हुए हैं या बोल्ड हुए हैं जिस पर बॉल एकदम जो है वो बाउंस पहले बाउंस के बाद नीचे हो गई है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है बैट्समैन के लिए बैटिंग करना जहां अन इवेंस बाउंस हो जहां उनको समझ नहीं आएगी ये बॉल किस वक्त जो है वो नीचे डाउन हो जाएगी और उनकी विकेट पर लग जाएगी या पैड्स पर लग जाएंगी। तो ठीक है स्कोर 150 है लेकिन लेट्स सी है। और आपको पता है कि हमारे वैंकूवर नाइट्स में तकरीबन हमारे 4-5 प्लेयर्स थे, जिसमें से आपको पता है फिर
वो तो अपने
नसीब नहीं मिले, लेकिन मोहम्मद आमिर जो है वो आज बॉलिंग करा रहे हैं,
आमिर को मिल गई थी,
और हमारे जो है मोहम्मद आसिफ वो भी वैंकूवर नाइट्स के साथ जो है वो आज उन्होंने खेला, को बैटिंग भी की उन्होंने। तो अभी ये मैच जो है वो जारी सारी 13.5 बॉलों का जो है वो
के अंदर आपको स्पार्क नजर आ रहा है अभी भी?
आसिफ खेल रहे, लेकिन अब वो आसिफ में जो बात
वो
थी
नहीं,
वो नहीं है जाहिर टाइम। देखें ये बैट्समैन जितने भी हार्ड हिटर्स होते हैं बैट्समैन, इनका एक टाइम वो होता है स्पैन, अगर आपने उसमें उनको कैश करा लिया, उनको चीजें चला ली तो वो चल जाते हैं, लेकिन अभी अगर वो अपने आप को खेलना तरीके से फॉर्म में आए खेलें तो उनका टैलेंट है ऑफकोर्स, और इतने अभी वो उनकी एज भी नहीं है।
वैंकूवर के साथ हमारे एक और भी प्लेयर है ना, तनवीर भी हैं, सोहेल तनवीर भी खेल रहे हैं, तो वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, कोई उन्होंने किए अभी तक ओवर्स जो हैं?
मेरे ख्याल से तनवीर वैंकूवर नाइट्स आदमी, मैं चेक कर लेता हूँ। इनके साथ मेरे ख्याल से आमिर हैं।
अच्छा, आमिर
तो वो वैंकूवर के साथ नहीं है, मैं इसको चेक करूंगा किस टीम के साथ है।
अच्छा अच्छा,
तो सिलसिला जारी है जनाब, ये मैच लाइव चल रहा है और 150 रन का टारगेट है, 94 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं ब्रैम्पटन वुल्स के, और ये 14 ओवर का मैच जो है वो हो चुका है।
लेकिन वैसे तुम्हें क्या लग रहा है G20 के बारे में इस दफा, ये जो फोर्थ एडिशन है इसमें जो ये बड़े बड़े स्टार्स नहीं आए, ये मैंने पूछा था ये क्रिकेट कनाडा से भी कि ये जो बड़े बड़े स्टार्स, क्योंकि ब्रैम्पटन में हो रहा है ना, तो ब्रैम्पटन में देसियों का ये है कि देसी स्टार आए, वैसे तो दूसरे आए हैं स्टॉइनस वगैरह, लेकिन देसी स्टार चूंकि बहुत सारे, तुम्हें क्या लग रहा है ठंडा चल रहा है कि ठीक ही चल रहा है?
अच्छा, मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है।
अच्छा अच्छा,
अब आप कहें ना कि यार देसी स्टार्स नहीं आए, अच्छा जितने यंग बच्चे हैं ना यहाँ बहुत सारे, उनके लिए ये मैटर सम टाइम नहीं करता, उनके लिए मैटर ये करता है कि स्टार्स आए हैं। अब वो स्टार्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, इंग्लैंड का हो, श्रीलंका का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, दे लव स्टार। ये तो हम क्योंकि पाकिस्तान से हम रहे हैं सारी जिंदगी, तो हमें लगता है कि यार फिर इंडियंस जो हैं वो समझते हैं, जो हमारी एज के जो यंग बच्चे हैं, ऑफ कोर्स उनके आइडियल हैं, लोग पसंद करते हैं बाबर आजम को, मोहम्मद रिजान को, शाहीन अफरीदी को,
कोहली
कह रहे हैं, और जितने इंडियंस जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, बुमराह हैं, लेकिन जो यंग बच्चे हैं वो
उसको एक्साइटमेंट चाहिए,
उनको एक्साइटमेंट चाहिए, क्योंकि उनके लिए देखें ये नेमत है
कि क्रिकेट
वो अच्छा जो जितने बच्चे या क्रिकेट खेलते हैं, मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है छोटा, उनके लिए यही बहुत बड़ी वो नेमत होती है, एक तरीके एज अ नेमत ट्रीट करते हैं, ब्लेसिंग ट्रीट करते हैं कि जब इस तरह का इवेंट हो रहा है और दुनिया भर के जो है वो प्लेयर्स यहां आ गए, तो उनके लिए ये नहीं पता था कि भाई पाकिस्तान से बाबर आजम नहीं आए तो वो नहीं जाएंगे, नो। अच्छा, आज भी इस वक्त ये लाइव जो मैच चल रहा है, मैंने भी माई भाई से कहा कि दोनों बेटे जो हैं दो चार के साथ बैठ के मैच देख रहे हैं, तो उनको उनको इस बात से वो नहीं होता कि बाबर आजम नहीं आया।
टिकट भी तो कितने सस्ते हैं ना,
बहुत सस्ते हैं, मैं कहता हूँ जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, जितने भी जिनके पास टाइम है और अपने बच्चों को जरूर लेके जाएं और स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व करें, और यही एक तरीका है स्पोर्ट्स, जिसके थ्रू आप एक जो है ना हेल्दी बच्चों को जो हेल्दी माइंड कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी, तो वो जरूरी है कि आपने स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं उनको एक्टिविटीज में डालें। तो अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं, तो अगर आपको अभी टाइम नहीं मिल रहा तो जनाब वीकेंड पे जरूर आप चले जाएं, बच्चों को
सैटरडे संडे को है,
सैटरडे संडे जाएं, आप मैचेस होते हैं वहां, और आप जाइए बच्चों के साथ थोड़ा सा एक्टिविटीज कीजिए, जरूरी नहीं आप सारा दिन जाएं, अगर आपको लगता है सुबह में टाइम है आप सुबह चले जाएं, और शाम के मैचेस 4 बजे शुरू हो जाते हैं तो आप उस वक्त भी जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है तमाम सामईन और नाज़रीन आप अपने बच्चों को करें, क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में कि जो क्राइम यहां बढ़ रहा है उसमें ज्यादातर बच्चे यूथ आ रहे हैं, 17 साल 16 साल।
इसकी क्या वजह है, ये बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है?
नहीं, शाज़िया,
थ्रिल के लिए,
ये फन के लिए, मैं बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली, ये इनके लिए ये चोरी करना, वो कर लेना, और फिर क्विक मनी और थ्रिल फन, बस किसी का घर तोड़ दिया चले गए वहां से 2-4 उठा लिए, 100-150 बन गए, 200 बन गए, क्विक मनी। अच्छा जी आधे घंटे में तो 15 मिनट में तो करना ही खारी कार, बोलिए 15 मिनट 5-10 मिनट में।
उनको पता नहीं है आज मोस्टली घरों में आजकल जो है वो कैमरे लगे हुए हैं,
आपने देखा हुआ जितनी भी चीजें एक्टिविटीज होती है, अभी जब वो सारा ग्रिफ्टी का मामला आया था,
ग्रिफ्टी
सब कुछ किया, तो आपने देखा था एक ने वो स्कैरी मूवी का मास्क लगाया हुआ था,
स्क्रीम का
तो वो दे नो हाउ टू सेव आवर सेल्फ ना।
लेकिन आमिर तुम एक दिन पहले एक जो तुम दिखा रहे थे, जो वीडियो दिखा रहे थे, उसमें तो वो जो यंग बच्चे थे उनके तो मुंह कवर ही नहीं थे, जो घर के अंदर तोड़ के वो गए।
जी बिल्कुल, कुछ बच्चों की जो है वो शक्लें आ जाती हैं, आपने देखा होगा अभी पील रीजन ने काफी जो है वो तकरीबन 18-19 बच्चों को किया था, उनमें से सबकी ही पिक्चर्स रिलीज कर दी थी, सिर्फ उनमें से 2-3 लोग बच्चे थे जिनकी उम्रें जो है वो अंडर 17 थी, एक की तो 14 साल की एज थी, उनकी पिक्चर्स फिर वो रिवील नहीं करते, आपको पता है कि यहाँ के लॉ के हिसाब से जो بچے مائنرز ہوتے ہیں ان کی پکچرز جو ہیں جو کرائم میں انوالو ہوتے ہیں ان کی ریلیز نہیں کی, لیکن جو ابو 23, 24, 25 کے جس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں, یہاں صرف لڑکے نہیں ہیں اور یہ ہر کمیونٹی سے ہیں, میں نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی پاکستانی یا انڈینز یا کسی اور, اس میں تقریباً سبھی کمیونٹیز کے بچے کہیں نہ کہیں انوالو ہو رہے ہیں اور ان کی تصویریں بالکل پولیس ان کو ریلیز کرتی ہے. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ان کو سزائیں نہیں ہوتی شاید, ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. اب وہ ان کو پتا ہے, اچھا پھر جو ان کے جو
ڈیلنکوینٹ جو جیلز یعنی کہ جو مائنرز کے لیے جیلز ہیں وہ
نہیں ہیں, نہیں اتنا نہیں چلتے, یہ ریلیز ہو جاتے ہیں, جلد ہی ریلیز ہو جاتے ہیں, ود ان 3 منتھ 2 منتھ یہ ریلیز ہو جاتے ہیں.
لیکن 3 مہینے ان کو رکھتے ہیں جیل میں,
ہاں, کیونکہ یہاں سلسلہ جو انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا, جو بیسیکلی کر تو ٹیمز دوسری رہی ہے نا, یعنی یہ تو کہہ لیں کہ ایز این ہائری ہے, مطلب یہ تو امپلائی ہے, ان کے جو امپلائر ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے ایک سائیکل بنا لی ہے, ان کو پتا ہے کہ یار اگر خدا نہ خاصتا یہ بیچ ہمارا پکڑا بھی گیا تو یہ 2-3 مہینے کے لیے اس کو انڈر گراؤنڈ کریں گے, جب اس دوران ہم اپنا دوسرا بیچ جو ہے وہ تیار کر لیں گے. یہ باقاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جی ٹی اے میں یہ اس طریقے سے ہائرنگ ہو رہی ہے بچوں کی کہ آپ کو جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے, آپ کو گاڑیاں دی جائیں گی, آپ کو ایک لائف اسٹائل مل جائے گا. مطلب آپ سوچیں 10ویں 11ویں کلاس کے بچے کو آپ جو ہیں وہ پیسے دے دیں گے, کوئک منی, اس کو کچھ نہیں کرنا, تو وہ سم ٹائم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ وہ ماں باپ کے اوپر کیا پڑے گی یا ان کی زندگی میں آنے والے وقتوں میں ان کے اوپر کیریئر پہ کیا اثر پڑے گی. لیکن کیونکہ وہ ان کے ذہن میں ایک بات بٹھا دی جاتی ہے, اور یہ مائنڈ آپ کو پتا ہے را مائنڈ ہوتے ہیں, 9-10 سال ایک کلاس کی ایج میں, 12-13-14 سال کے بچوں کا, 15 سال کے بچوں کا, ان کو جو دماغ میں بتا دیا اچھا لگا وہ انہوں نے کر لیا, وہ ریبیلین ہوتے ہیں نا ان کے اندر, بس ماں باپ سے تو لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت, ماں باپ تو ہٹلر رکھتے ہیں. لیکن یہاں اگین میں یہ کہوں گا کہ ماں باپ کا ہی رول ہے, اور آپ اپنے بچوں کو سر ضرور دیکھیں. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے گاڑیاں بنا لی, گھر بنا لیے, آپ نے سیونگ کر لی, آپ کا ایسڈ ہے. سر میں اس بات پہ فرم بلیو کرتا ہوں کہ میرا ایسڈ جو ہے نا وہ میرے الحمدللہ بچے ہیں, اور آئی ہوپ کہ آپ کے ایسٹس بھی آپ کے بچے ہوں گے. تو آپ یہ کیسے برداشت کر لیں گے کہ آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ برباد ہو جائیں اور وہ کسی ایسی چیزوں میں انوالو ہو جائیں جہاں یہ اپنا آنے والا وقت جو ہے, آنے والی یعنی آپ کی نسل اور آگے چلنے والی, اس کو بھی بربادی کی طرف لے جائیں. تو اپنے بچوں پہ ضرور نظر رکھیں اور ان کے ساتھ منگل اپ کریں, ان سے بات کریں, فرینڈ شپ کریں. شام میں جس دن چھٹی ہو ان کے ساتھ چلے جائیں, گھوم لیں, پھر لیں, تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سوال و جواب بھی کریں. اور میرے نزدیک جو میں نے اپنے اندر ایک چیز شروع کی, کیونکہ میرے بچے پہلے مجھے بھی وہ ہوتا تھا کہ بچے جب میرے 14-15 سال, اب بڑا بیٹا میرا 18 سال کا ہو گیا ہے, چھوٹا جو ہے وہ 15 ایئرز ہو گیا, 16 میں آ گیا بلکہ, تو وہ اب میں نے کوشش کی ہے کہ اب میں ان کی سننا شروع کروں, یعنی آپ ان کی بات سمجھیں. کیونکہ پرابلم یہی آتا ہے کہ اکثر بچوں کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ ہماری بات سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. نہیں سر, ہر وقت غلط نہیں ہے بچے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, لیکن آپ ان کی باتیں سننا ضرور شروع کریں, ان کی باتیں سنیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے پرابلمس کیا ہیں, یا کیونکہ وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں اور آپ جس معاشرے سے آئے وہاں بہت ڈفرینٹ ہمارا براٹ اپ ہوا ہے, ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ پڑھایا گیا, سکھایا گیا, ہمیں آگے بڑھایا گیا, لیکن یہ ڈفرینٹ معاشرے میں پڑھ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. ان کی تکلیف کو سمجھیں. ہم وہاں پاکستان میں ہوتے تھے, انڈیا میں ہوتے تھے, ہمارا مقابلہ صرف پاکستانی بچوں کے ساتھ ہوتا تھا, یہ جو انڈیا ہے وہ انڈینز کے ساتھ ہی بچے ظاہر آس پاس اسی طریقے. سر ان کو کمپیٹ کرنا ہے یا ان کے دماغ کو جو کنٹرول کرنا ہے, وہاں دنیا کا ہر نسل کا ہر مذہب کا بچہ یہاں آیا ہوا ہے, یہاں فیملیز آئی ہوئی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہمارے بچے کن انوائرمنٹ میں جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یار ہمارا فرض پورا ہو گیا, ہم نے یہاں لا کے چھوڑ دیا. نہیں سر, یہاں زیادہ دیکھنا ہے, کیونکہ وہاں تو صرف انڈیا میں انڈینز کمیونٹی یا جس بھی مذہب کے کہہ لیں, یا پاکستان میں کہہ لیں, یا سری لنکا, بنگلہ دیش, لیکن یہاں بہت ڈفرینٹ ماحول ہے. تو میری گزارش یہی سب کے ساتھ, ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں جب بھی میں اپنی دوست یاروں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بھی میری بات ہوتی ہے, تو ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ بچوں کی تو ان کی مجبوری سمجھیں کہ وہ جس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو براٹ اپ کر رہے ہیں, جہاں جی رہے ہیں, وہ بہت ہی مشکل انوائرمنٹ ہے بچوں کے لیے, کیونکہ ان کے پاس بہت ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہو کہ ہم ان کے سوالوں کو ایڈریس کریں اور اس کا جواب بھی دیں. چلیں جناب, اب ٹاپ آف دی آور کا بریک لے لیتے ہیں, لیکچر لمبا ہو گیا. اور 7:15 بجے ہمارے ساتھ جو ہیں سید اکبر حسین صاحب جڑیں گے اسکائپ پر, اور ان سے کچھ سیاسی گفتگو کا سلسلہ جو ہے شروع کریں گے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ٹاپ آف دی آور کا بریک لے لیتے ہیں اور پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر 416-620-1778 ہمارا نمبر ہے.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $19.6 million ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660 quicktruckloop.com।
3 अगस्त दिन शनिवार मेट्रो कबड्डी क्लब वालों नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ ओंटेरियो की निगरानी हेठ ब्रैम्पटन के CAA सेंटर दे विच करवाया जा रहा है कबड्डी कप। इस विच पाकिस्तान के चोटी के कबड्डी खिडारियों की टीम भाग लवेगी अते नाल ही एक कप मरहूम सरदार सुखमिंदर सिंह हंसरा नू डेडिकेट किया जाएगा। इस कप की कोई एंट्री फीस नहीं भाव बिलकुल फ्री होगा। वधेरे जानकारी कॉल करो सुखा मान 416-617-2205। Proud to be in it।
10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੀ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਆਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ